नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में पेपर लीक मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, बेहतर बाढ़ प्रबंधन के लिए नदियों के जलस्तर की पूर्वानुमान प्रणाली को उन्नत किया जाना चाहिए। उन्होंने बाढ़ प्रबंधन तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। नई लोकसभा का पहला सत्र नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ कल से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के विस्फोट में 2 जवान शहीद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दोबारा प्रयोग होने वाले प्रक्षेपण यान पुष्पक का 3रा और अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न। तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में धीरज और अंकिता भक्त ने रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3रे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पहली प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार ये प्राथमिकी शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए ब्यूरो की ओर से विशेष दलों का गठन किया गया है, जो पटना और गोधरा जा रहा है। प्राथमिकी में कहा गया है कि इस परीक्षा के आयोजन के दौरान कुछ राज्यों में अलग अलग घटनाएं हुई। शिक्षा मंत्रालय ने अनियमितताओं की ब्यूरो से व्यापक जांच कराने का अनुरोध किया है। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस वर्ष परीक्षा में कृपांक पाने वाले 1563 विद्यार्थियों की पुनर्परीक्षा आज हुई। इसमें सिर्फ 813 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 750 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इस मामले में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को आज पटना में आर्थिक अपराध इकाई की अदालत में पेश किया गया। इन्हें कल झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में बिहार से 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि सरकार नीट परीक्षार्थियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अनेक कदम उठा रही है।
हमारा एग्जामिनेशन का क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 दिन में बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिया। एक तो अभी नया डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देखने के लिए, और दूसरा एक हाई लेवल कमिटी को भी गवर्नमेंट ने फॉर्म किया, और इस कमिटी में एमिनेंट एक्सपर्ट्स भी है। ऐसे एक्सपर्ट्स एक कमिटी में है, और एक कमिटी का ऑब्जेक्टिव 2 है। एक एनटीए का फंक्शनिंग का रिफॉर्म करना, और दूसरा है टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन एग्जाम्स को कैसा कंडक्ट करना सेफली सिक्योरली। और हमारा उम्मीद है कि एग्जामिनेशन सिस्टम को और एनटीए को और ज्यादा मजबूत करेंगे।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में इन कदमों की सराहना करते हुए इसे जरूरी बताया।
जो भी आवश्यक कदम है वो शिक्षा मंत्रालय उठा ही रहा है, और छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सबको विश्वास रखना चाहिए सरकार के ऊपर, शिक्षा मंत्रालय के ऊपर। और जहां तक एनटीए की बात है तो उनके चीफ को अभी बदला गया है, और भी जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुझे ऐसे लगता है कि एक विश्वास का माहौल बहुत जल्दी ही बनेगा, और फिर से एक फेयर ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम है उस पर भरोसा कायम होगा।
गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने देश में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए व्यापक और दूरगामी नीति बनाने पर भी जोर दिया। एक रिपोर्ट।
बैठक के दौरान श्री शाह ने संबंधित विभागों को सिक्किम और मणिपुर में हाल ही में आई बाढ़ का विस्तृत अध्ययन करने और गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा पूर्वोत्तर में कम से कम 50 बड़े तालाबों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को उन तालाबों में संग्रहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे कृषि, सिंचाई और पर्यटन को मदद मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। गृह मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बाढ़ प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी सलाह को समय पर लागू करने की अपील भी की है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
गृह मंत्री ने ग्लेशियल झील में बाढ़ से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जंगल की आग की घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने का भी निर्देश दिया। नई लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के दौरान नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। एक रिपोर्ट।
केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद ये पहला सत्र होगा। सत्र के दौरान अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त वरिष्ठ भाजपा सांसद मृतहरि महताब नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसी दिन राज्यसभा का भी सत्र शुरू होगा। संसद सत्र 30 जुलाई को समाप्त होगा। दिल्ली से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज हुए आईईडी विस्फोट में कमांडो बटालियन कोबरा के 2 जवान शहीद हो गए। ये घटना दोपहर बाद लगभग 3 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि घटना के समय सुरक्षाकर्मी सिलगीर कैंप से टेकलागुडम कैंप की ओर जा रहे थे। पश्चिम बंगाल पुलिस की एक विशेष कार्यबल ने पश्चिम वर्धमान जिले के पानागढ़ इलाके में विदेशी आतंकी संगठन से जुड़े एक छात्र और 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। ये छात्र बांग्लादेश के प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन शहादते अल हिकमा के साथ जुड़ा है। छात्र को 14 दिन के विशेष कार्यबल के हिरासत में भेज दिया गया है। वित्त मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारामन ने तमिलनाडु शराब कांड को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है।
गैर कानूनी लिकर के वजह से 56 लोग का मौत हुआ और 200 से ज्यादा लोग आज भी हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी या राहुल गांधी जी एक भी बयान आज तक नहीं दिए। बिल्कुल मैं डिमांड करती हूँ इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथ में सौंपना चाहिए।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि दोबारा प्रयोग होने वाले प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम परीक्षण आज सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। ये परीक्षण आज सुबह कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण परिसर में किया गया। इससे प्रक्षेपण लागत में कमी आएगी और भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम को उन्नत बनाने में सहायता मिलेगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सफल परीक्षण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सराहना की है। श्री जोशी ने कहा कि संगठन की यह सफलता अंतरिक्ष अन्वेषण में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अपराध न्याय प्रणाली व्यवस्था में भारत के प्रगतिशील पद से संबंधित एक सम्मेलन आज चेन्नई में हुआ। इसमें 1 जुलाई से 3 नए अपराध कानूनों के प्रभावी होने पर चर्चा की गई। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि औपनिवेशिक शासकों ने भारतीयों को दंडित करने के लक्ष्य से भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया था। श्री मेघवाल ने कहा कि न्याय प्रदान करने के लिए अब भारतीय न्याय संहिता शुरू की गई है।
1 जुलाई से तीनों हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे जो कानून आए हैं वो लागू हो जाएंगे और इसमें ईज ऑफ जो लिविंग है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, नागरिकों की सुविधा बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा और टाइमलाइन इसमें तय की है, ये मेजर चेंज है। टाइमलाइन तय करते ही नागरिकों को न्याय जल्दी मिलेगा।
विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर आज अबुधाबी पहुंचे। डॉ जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान व्यापक नीतिगत साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में धीरज और अंकिता भक्त ने रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने मैक्सिको के मार्क्स अलमायदा और एना लुइजा को 5-3 से पराजित किया। महिला क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। बेंगलुरु में भारत ने 216 रन का लक्ष्य 41वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट पर 215 रन बनाए। गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आज ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि यह भारतीय खेल में ज्ञान, नवाचार और प्रदर्शन के केंद्र के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में ओलंपिक से जुड़े डेटा, प्रशिक्षण पद्धतियों, खेल विज्ञान और खिलाड़ियों के विकास से जुड़ी जानकारी होगी। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक और गोवा में अगले 4 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों में अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में पेपर लीक मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा बेहतर बाढ़ प्रबंधन के लिए नदियों के जलस्तर की पूर्वानुमान प्रणाली को उन्नत किया जाना चाहिए। उन्होंने बाढ़ प्रबंधन तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। नई लोकसभा का पहला सत्र नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ कल से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के विस्फोट में 2 जवान शहीद और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दोबारा प्रयोग होने वाले प्रक्षेपण यान पुष्पक का 3रा और अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।